आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल्ल के समय सार गाथा 30, 31 एवं 32 पर प्रवचन सुनिए।
जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव से अधिक अपने आत्मा को जानते हैं, वे जितेंद्रिय जिन हैं, ऐसा निश्चय नय के जानकार साधु कहते हैं। क्या कहते हैं? कि वो जितेंद्रिय जिन हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीत कर अपने भगवान आत्मा को जाना है। तो एक बात है कि आप बता रहे थे कि निश्चय स्थिति किसे कहते हैं, और यह बताने ही लग गए कि जिन जितेंद्रिय जिन हैं, तो हमने ये कब पूछा था कि जितेंद्रिय जिन किसे कहते हैं? हमारा प्रश्न तो निश्चय स्थिति के बारे में था। तो आचार्य देव कहते हैं कि देखो, दो द्रव्यों के बीच में निश्चय से बंध बंधक भाव नहीं होता। क्या मतलब है? कि दो द्रव्य हैं, जो सभी आत्मा समान हैं, हम बोलते हैं मम स्वरूप है सिद्ध समान। जब मेरा स्वरूप भी सिद्धों के समान है, तो फिर एक आत्मा नमस्कार करे और दूसरा नमस्कार कराए, ऐसा कैसे हो सकता है? नाइयों की बारात में मसाल कौन ले, और लोगों की बारात में तो नाई मसाल ले ले, लेकिन सभी सिद्ध के समान हैं, सम बराबर हैं, तो एक दूसरे की भक्ति करें, ये बात आई कहाँ से? व्यवहार से तो अंतर है, क्योंकि व्यवहार पर्याय की तरफ से देखता है। तो सिद्ध भगवान की पर्याय परम पवित्र है, वीतरागी है, और हमारी पर्याय राग द्वेष मय है, इसलिए हम भगवान की भक्ति करें ये बात ठीक है। लेकिन निश्चय ऐसे विचार करें तो जैसा आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड उनका है, वैसा ही हमारा है। जब हम में और उनमें कोई अंतर ही नहीं है, तो हम उन्हें नमस्कार करें और वे हमसे नमस्कार करवाएं, ऐसी भक्ति निश्चय में नहीं हो सकती। इसलिए बोलते हैं निश्चय नय में बंध बंधक भाव नहीं होता, माने दो द्रव्यों के बीच में एक नमस्कार करे और दूसरे नमस्कार कराए, ये ठीक नहीं। देखो अभी जमाना आगे बढ़ रहा है ना, पहले आदमी कंधों पर आदमियों को ढोते थे कि नहीं पालकी में, अब आज क्यों नहीं ढोते? तो साहब एक आदमी पालकी में बैठे और दूसरा उसे कंधे पर ले जाए, दोनों आदमी बराबर है तो ये बात उचित नहीं। बोलते कि नहीं, मेले को भी माथे पर ढोए, गवर्नमेंट कहती है ठीक नहीं है। सब व्यवस्थाएं बदल गई ना, जब सब आदमी समान है तो एक आदमी सेवा करे और दूसरा सेवा कराए, ये कैसे हो सकता है? यही बात यहाँ निश्चय नय में है, जैन धर्म में तो बहुत पहले से है ये बात। तो फिर कहते हैं कि निश्चय स्थिति किसे कहेंगे? तो कहते जिसने अपनी इंद्रियों को जीता है, वो ही वास्तव में भगवान का सच्चा भगत है। अपनी इंद्रियों को जीता है, वो भगवान का भगत है, वो निश्चय स्थिति है। कि हम पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं, अष्टद्रव्य से अर्घ चढ़ाते हैं, ये सब व्यवहार स्थिति है, नहीं है ये बात नहीं है। और हम अपने आत्मा को पहचान कर पांच इंद्रियों की गुलामी से मुक्त होते हैं, ये निश्चय स्थिति है भगवान की। सुना, इसमें भगवान की क्या बात आई? ये तो अपने आत्मा को जानने की बात आई ना। जैसे अपने आत्मा का ध्यान कहो, तुम भगवान की भक्ति कैसे कहते हो? तो कल कहा था ना विस्तार से कि भगवान दो प्रकार के होते हैं, एक जिनकी वो मूर्तियां विराजमान है मंदिर में वो, और एक अपने देह रूपी मंदिर में जो विराजमान है वो। तो उनकी भक्ति का नाम है व्यवहार भक्ति, और इसकी भक्ति का नाम है निश्चय भक्ति। क्योंकि पराश्र तो व्यवहारा और स्वाश्र तो निश्चया, पर के आश्रय से जो कार्य होता है उसे व्यवहार कहते हैं, और अपने आश्रय से जो कार्य होता है उसे निश्चय कहते हैं। कैसा ठीक है, तुम इस भगवान की भक्ति को निश्चय भक्ति कहो, लेकिन इसमें तो ऐसा लिखा कि ये जिनेन्द्र भगवान की निश्चय भक्ति है। बहुला जी साहब, तो उनकी निश्चय भक्ति ये कैसे कहलाएगी कि हमने इंद्रियों को जीता? तो हम उदाहरण से समझे कि एक पुत्र अपने पिता की सुबह से पूजा करता है, कुर्सी पर बैठा लेकर चरण धोता है, और उनको बराबर अष्टद्रव्य से उनकी पूजा करे जलम चंदनम, लेकिन वो पिता कहे कि भाई जरा मेरे को बाथरूम जाना है, तो पहले मुझे बाथरूम जाने दे, बाद में मैं बैठूंगा। नहीं, चुपचाप बैठूंगा, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है, पहले मुझे अपना काम निपटाने दो। तो पिता का भगत है वो। वो कहे कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए पीने के लिए, तुम पहले पानी लाओ। कहने पानी मानी बाद में, पहले मुझे पूजा कर लेने दो। तो भगवान की ऐसे पिता की अष्टद्रव्य से पूजा तो करे, लेकिन उसकी सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखे, और जो वो आज्ञा देता है वो नहीं माने, तो वो पिता का सच्चा भगत है कि भले ही अष्टद्रव्य से पूजन नहीं करे और उसकी आज्ञा माने, बोलो वो सच्चा भगत है। तो आज्ञा माने वही सच्चा भगत माना जाएगा ना। तो कहते हमारे भगवान की आज्ञा क्या है, आदिनाथ से लेकर महावीर पर्यंत इन 2400 तीर्थंकरों की आज्ञा क्या है हमारे लिए। तो उनकी आज्ञा ये है कि तुम सारे जगत से दृष्टि हटाकर, 5 इंद्रियों की गुलामी छोड़कर, इन्हें जीत कर, अपने आत्मा को जान कर उसमें ही जम जाओ, ये भगवान की आज्ञा है कि नहीं है, बोलो। सत्वाचु तुमने कहा सम्मय दर्शन ज्ञान चारित्र प्राणी मोक्ष मार्ग, सम्मय दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, तुम इस पे ही चलो। तो आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। तो ये जो हमने इंद्रियों को जीत कर अपने आत्मा का अनुभव किया, तो ये भगवान की आज्ञा का पालन हुआ, इसलिए ये उनकी भी सच्ची भक्ति हुई। उनकी पूजा करे, वंदना करे, अभिषेक करे, लेकिन उनकी एक भी बात माने नहीं। माने तो बहुत दूर की बात है, उनकी एक भी बात सुने नहीं। तो वो भगवान का सच्चा भगत भगवान की बात सुनकर, समझकर, मानकर और तदनुसार अपने जीवन को बनाना, ये सच्ची भगवान की भक्ति है कि भगवान के गुणानुवाद करना, ये भगवान की भक्ति है। विचार करो, देखो भाई ये जो जिनवाणी अपन पढ़ते हैं ना, जैसा में पूजा हो रही थी इतनी बढ़िया, अमीज में पंडित आ गया, अपना प्रश्न करने लग गया, भगवान ही तरफ रह गए। अच्छी बात है क्या, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो अपन बराबर सुबह 7 बजे से पूजन शुरू की, 2 बजे तक पूजन चलती थी ठाक से, अब बीच में विघ्न खड़ा हो गया। तो बोलो जी, तो अपन एक बात पे विचार करें गंभीरता से कि ये जो बात अपन कर रहे हैं समय सार में लिखी है, ये बात अपने घर की तो है नहीं, ये भगवान की दिव्य ध्वनि का ही सार है ना, वही बात अपन कर रहे हैं। भगवान की पूजा भक्ति में और उनकी लिखी हुई जिनवाणी है, जिनवाणी है ना, ये पढ़ने में फर्क क्या है, इस पर हम थोड़ा गहराई से विचार करें तो बात ख्याल में आएगी। तो मैं इसे ऐसा बोलता हूँ कि जब भगत बोले और भगवान सुने, उसका नाम है पूजा भक्ति, और जब भगवान बोले अथवा उनका कोई भगत भगवान की तरफ से बोले, एक ही बात है, और जनता सुने, उसका नाम है स्वाध्याय। अंतर दोनों का ख्याल में है ना, मैंने भगवान की बात भगत सुने उसका नाम है स्वाध्याय, और भगत की बात भगवान सुने उसका नाम है पूजा भक्ति वंदना स्तुति। देखो जब हम पूजा बोलते हैं ना, अभी बोल रहे थे ना आप सब स्पीकर पर ठाक से, तो सब वक्ता थे और बेचारा एक भगवान अकेले श्रोता थे। अपन सब वक्ता थे ना, सब बोलो साथ में, वक्ता कितने, 1000-2000, और श्रोता कौन, अकेले भगवान बैठे बैठे शांति से सुन रहे। और अभी जो बात हो रही है वो भगवान बोल रहे, मैंने मैं भगवान ही ऐसा मत समझना भाई साहब, ये तो भगवान की बात है ना जो पढ़कर मैं आपको सुना रहा हूँ। तो भगवान बोले और जनता सुने, उसका नाम है स्वाध्याय। अब इन दोनों में कौन सी बात ज्यादा महान है, महान तो दोनों ही है, हल्का काम तो कोई नहीं है, बढ़िया काम तो दोनों ही है, गंदे पानी से तो बढ़िया ही है ना। लेकिन हमारे पास भक्तों के पास ऐसा क्या है जो हम भगवान को सुनाए और भगवान को पता ना हो। बोलते हैं ना, तुमको बिन जाने जो काले से पाए सो तुम्हें जानत जिनेस। हे भगवान, तुम्हें जाने बिना हमने जो कष्ट पाए हैं उन्हें तुम अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि केवल ज्ञानी हो, भगवान नहीं जानते, सब जानते हो भगवान आप। ऐसा हम जानते हैं कि भगवान सब जानते हैं, फिर भी अपनी कहानी भगवान को सुनाए बिना रहते नहीं है, पर हमारी कहानी में दम क्या है? ऐसा बोलते हैं कि जानत दिनेश, फिर आगे शुरू कर देते हैं, पशु नारक नर पशु गति मझार, नर नारक पशु सुर गति मझार, भवे धरे धरे मरियो अनंत बार। हे भगवान, मैं चार गति 84 लाख योनियों में अनंत बार धर्म मनुष्य जन्म ले करके अनंत दुखी हुआ, ये बात भगवान को पता नहीं है? तुम भी कह रहे थे अभी तुम्हें सब पता है। अब जो उन्हें सब पता है उन्हें कुछ सुनाने से क्या लाभ है बताओ मुझे? तो भैया फिर भी हम सुनाते हैं, मैं नहीं कहता हूँ नहीं सुनाना चाहिए, सुनाओ भाई साहब। डॉक्टर के पास जाओ तो आपकी शकल देख के होशियार डॉक्टर समझ जाता तुम्हें क्या तकलीफ है। क्यों? क्या अभी जुकाम का सीजन चल रहा है, अभी फ्लू चल रहा है, तुम्हारी हालत देखकर सुबह से 10 मरीज निपटा चुका है, नहीं समझ जाता कि तुम्हें क्या तकलीफ है? होशियार डॉक्टर समझ जाता है, फिर भी आप अपनी तकलीफ डॉक्टर को बताओ मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ऐसा तो मत करो कि 2 घंटे तक डॉक्टर को अपनी तकलीफ सुनाओ और डॉक्टर कहे कि अब जरा चुप रहो मेरी बात सुनो, क्या मुझे फुर्सत नहीं है, समय हो गया तो भागो। और डॉक्टर की सुनो ही नहीं हो तो आपकी तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी बोलो? थोड़ी बहुत डॉक्टर की भी सुनना चाहिए कि नहीं? वास्तव में तो डॉक्टर को अपनी उतनी ही सुनाना चाहिए जितनी डॉक्टर पूछे, ख्याल में है ना? बाकी डॉक्टर की बात ज्यादा सुनने से ही लाभ है। लेकिन बहुत लोग ज्यादा बोलने वाले होते हैं ना, तो डॉक्टर की सुनते ही नहीं अपनी अपनी सुनाते हैं। ऐसे ही हम हो गए, भगवान हमारे डॉक्टर हैं, हम उनके मरीज हैं। तो भगवान की बात तो सुनते ही नहीं और हम अपनी बात 8-8 घंटा भगवान को सुनाते हैं। चुपचाप बैठो, शांति से सुनो। और हमारे पास सुनाने को है क्या हमारे दुख होना रोने के अलावा? तो आदिनाथ भगवान की जयमाला है ना, उसमें आता है, ऊटे बलद भैसा भयो, आता कि नहीं आता? हे प्रभु चारों गति के माही मैं दुख भोगे सो सुनो। मैंने 4 गतियों में जो दुख पाए हैं उनको आप सुनो, भगवान से कहते हैं। आदि ईश्वर भगवान हो मारी दीन तनी सुन बीनती। हे आदिनाथ भगवान, मुझ दीन व्यक्ति की विनती सुनो। तो सुनाओ साहब, कि चारों गति के माई मैं दुख पायो सो सुनो। मैंने 4 गतियों में क्या क्या दुख पाए तो तुम सुनो, क्या हमें सब पता है यानी तो भी सुनो। ऊंटे बलद भैसा भयो, में ऊंट हुआ, बैल हुआ, भैसा हुआ, तापे लदियो भार अपार हो, उसमें बहुत बोझा लादा गया, नहीं चालो ता गिरे पड़े हो, पापी देशो तने की मार हो। तो पापी ने डंडे से मुझे बहुत मारा, अब भगवान को अपना दुख सुना रहा है। पापी देशो तने की मार हो, मार हो, मार हो, जान मनीरा, मारो 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 मारो, आज के आनंद की जय। अभी तो रो रहा था तू, जो मार पड़ रही थी, भगवान को दुख सुना रहा था, ये आनंद कहाँ से आ गया? बोलो भाई साहब, लेकिन पता ही नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ मुंह से, उसका क्या अर्थ है। अब ये आनंद है कि दुख है, अपना दुख सुना रहा था, आंख में आंसू की धारा थी और बीच में आपके आनंद की जय कहां से आ गई। लेकिन सचमुच उन शब्दों पर हम विचार ही नहीं करते, बाकी एक तो हम सुनते ही नहीं है, थोड़ा बहुत सुनने की कोशिश करें तो ये झांझ मंजीरा बीच में आकर आधे शब्दों को सुनने ही नहीं देते हैं। सुनते भी हैं तो उसका अर्थ समझते नहीं है, अर्थ समझे तो उस पर विचार करते नहीं है। छोटे मंजी साहब ने लगा कि मुख से क्या निकल रहा है, आंखें कहां जा रही है, उसका क्या अर्थ है, कोई ख्याल नहीं है। और कहता है कि मैंने भगवान की भक्ति की, क्योंकि मैं तो वक्ता हूं ना, श्रोता तो भगवान है, सुनने का काम तो उनका है, समझने का काम तो उनका है, मैं तो समझाने वाला हूं। हमारे पास ऐसा है क्या जो अपनी तकलीफों के अलावा जो हम भगवान को सुनाए, तो वे भी उन्हें सब मालूम है। और जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उसमें भगवान ने उन तकलीफों को दूर करने के लिए जो रास्ता बताया है वो है। तो ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण तो दोनों है, ऐसा नहीं समझना कि इसका महत्व तो नहीं है, महत्व तो उसका भी है और इसका भी है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है इस बात का हमें अभी निर्णय करना चाहिए। तो फिर आपको ऐसा तो नहीं लगे ना कि बीच में विघन हो गया है ना, और विघन करने वाला आप मुझे तो नहीं माने कम से कम, कि बीच में पंडित आ गया तो हमारी पूजा बंद हो गई और इसकी बातें शुरू हो गई। भाई तो दोनों में क्या अंतर है? देखो भगवान की भक्ति का फल क्या है, कल अपन ने कहा था कि सात से पुण्य का बंध, याद है कि नहीं? पुण्य का बंध है, कोई पाप बंधने वाला नहीं है। यहाँ पर गारंटी थी, पाप तो घर पे रहते तो बनता। अब कल्पना करो यदि आप अभी यहाँ नहीं बैठे होते इस पूजा में, कपड़े तो नहीं सुन रहे होते तो क्या कर रहे होते? तो आपको ख्याल में आ जाएगा 9:30 बजे है ना, तो कोई माताएं बहने रोटी बना रही होती, खा रही होती, खिला रही होती, तो है ना बताता तपेली में डाल करके अनंत जीव, तो उनको उबाल रही होती, तो पुण्य बांध रही होती क्या पाप? अरे आदमी क्या कर रहे होते, वो दुकान पे पहुंच कर ग्राहकों का इंतजार कर रहे होते, जैसे कि वो बगुला है ना किनारे पर बैठ कर एक एक मछली का इंतजार करता है, पुण्य कर रहे होते क्या पाप? अब वहां से यहाँ आ गए तो गारंटी से पुण्य बंध कर रहे हैं, ये तो नक्की है कि नहीं? इसलिए भाई साहब ये तो बहुत पुण्य का कार्य है, लेकिन अभी अभी आप भगवान को अपनी बात सुना रहे थे और आप भगवान की बात सुन रहे हैं, उन दोनों में फर्क क्या है? तो पुण्य जैसा भगवान की भक्ति करने से बंधता है, क्यों बनता है? क्योंकि वो शुभोपयोग है, अपने परिणाम शुभ है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में हमारे भाव नहीं गए, इसीलिए तो पुण्य बनता है ना। तो भगवान की बात सुनते वक्त भी हमारे मन हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में नहीं जाता है, इसलिए सात से पुण्य तो तब भी बनता है, स्वाध्याय के समय में भी बनता है और भक्ति के समय में भी बनता है। इस बात में तो दोनों की बराबरी हुई, लेकिन एक फर्क है, भक्ति में तो रिपीटेशन होता है, वो ही पूजा कल की थी और वो ही आज देव सास गुरु की, तो वो सारी जिंदगी से वो ही करते आ रहे हैं। तो जिसमें रिपीटेशन होता है उसमें हमें जवान को याद हो जाती है, मुंह से बोलते रहते हैं और मन कहीं चला जाता है, वो टाइपिस्ट के वहां की उंगलियां चलती रहती है टाइप पर, वहां से चलती रहती है यहाँ वहां। लेकिन जब आप स्वाध्याय करते हैं पढ़ते लिखते हैं तो उपयोग यहाँ ही लगाना पड़ता है, क्योंकि हर समय नई नई बात आती है, जो कल आई थी वो आज नहीं आएगी, आज आई थी वो कल नहीं आएगी। तो उपयोग जब ज्यादा इसमें लगेगा मन, तो ज्यादा पुण्य का बंध होगा, क्योंकि मन पाप भाव में जाएगा नहीं, तो उससे इसमें ज्यादा पुण्य का बंध होता है। खैर पुण्य का बंध तो ज्यादा होता ही है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति एक्स्ट्रा होती है, मुफ्त में, जबकि उसमें रिपीटेशन होने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। 6 घंटा बैठे, जैसे आए थे गए तो पुण्य तो लेके जाओगे, लेकिन एक अक्षर भी ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं। और स्वाध्याय में बैठोगे तो ऐसे जैसे आए थे उससे कुछ अधिक सीख के जाएंगे और पुण्य भी लेके जाएंगे। ऐसा समझ में आएगी। एक बात और भी है कि जब भगवान की पूजा भक्ति कोई करता है, अपने दुख भगवान को सुनाता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि मेरे दुख दूर कर दो भगवान, तुम्हारी भक्ति से मेरे दुख दूर हो जाए। कोई मरीज डॉक्टर के पास वैसे ही जाता है तो दुख दूर कराने जाता है और चाहता है कि डॉक्टर मेरा कुछ ऐसा करे जिससे मेरी तकलीफ दूर हो जाए। तो भगवान के पास कोई आता है तो कोई ना कोई कामना लेके आता है, मेरी तबीयत ठीक हो जाए, बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए, दुकान धंधा ठीक नहीं चलता है तो वो ठीक हो जाए। अपने अपने मन को तपास के देखना, किसी कोने में कोई ना कोई इच्छा बैठी ही होगी और भगवान से वो कामना से हम करते हैं। लेकिन आप प्रवचन सुनने आए तो ऐसा समझ के नहीं आई है कि अब मैं पंडित जी का प्रवचन सुनूंगी तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा, बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी, क्यों दुकान अच्छी चलने लगेगी, कोई लौकिक कामना से आए हैं। के लिए आए हैं कि मेरे को आत्मा परमात्मा की बात सुनने और समझने को मिलेगी। तो भगवान की पूजा भक्ति में तो कोई लौकिक कामना होती है और प्रवचन सुनने में, स्वाध्याय करने में ज्ञान की इच्छा होती है। तो ज्ञान प्राप्त करने की भावना और 5 इंद्रिय के विषय प्राप्त करने की भावना में कौन अच्छी भावना है, बोलो। बोलो गणपतलाल जी, मेरे साथ कौन सी भावना अच्छी है? ज्ञान प्राप्त करने की भावना तो ऊंची है ना, तो जिसकी भावना ऊंची होगी उसे पुण्य भी उसी ऊंची क्वालिटी का बनेगा। तो अरे भक्ति में क्या करेगा,
तुम्हें हो भवे भवे नाथ मेरे, मैं सदा सेवक रहूं।
तेरी मांग ही है हम करें क्या, कि तुम हमारे भवभव में नाथ हो और मैं तुम्हारा सेवक रहूं। तो सेवक ही रहोगे क्योंकि तुम्हारी एप्लीकेशन में ही ये लिखा है, तुम्हारी डिमांड यही है कि नहीं है। और जब स्वाध्याय हो गए तो मम स्वरूप है सिद्ध समान, मेरा स्वरूप तो हे भगवान आपके समान है, तुम आज के सिद्ध हो मैं कल का सिद्ध हूं। फर्क है कि नहीं है, मैं तुम्हारा सेवक वेवक नहीं, मैं तो खुद भगवान बनने की फिराक में हूँ। और हे भगवान मैं तो पक्की बात समझ लेना, तुम धोखे में मत रहना कि मैं तुम्हारी पूजा और भक्ति करता हूँ, ये बात सच्ची है। लेकिन कब तक,
जो लो नहीं नाते करो अरी को, नारी बरी समय साधारी के।
पार्श्वनाथ भगवान की पूजा की जयमाला में है क्या नहीं,
सवे लो सुबे भावे स्वागत है,
हे शुभ भाव तुम्हारा स्वागत तब तक ही है कि जब तक मैं भगवान नहीं बन गया। तो भगवान बनने की बात है, देखो भारतीय नारी का ये स्वभाव है, जिसको पति वो चुनती है तो कहती है कि आगे 9 भवों में भी मेरा यही पति रहे, अगले भव में भी मुझे यही मिले, ऐसी भावना रखती कि नहीं। लेकिन जैन नारी का ये स्वभाव नहीं है, घबराना नहीं। मैं पूछता हूँ कि कोई जैन नारी ये चाहती है कि अगले भव में भी मैं और सही हूँ, पुरुष तो नहीं हूँ, पुरुष तो नहीं हूँ। स्त्रीलिंग का खेद करना चाहती कि नहीं, धर्म काय के लिए है, औरत बनने के लिए कि भगवान बनने के लिए। गीता जी ने दीक्षा ली थी आरिका की, रामचंद्र जी को ठुकरा करके ले ली थी कि अगले भव में रामचंद्र जी की पत्नी बनूं। हे भगवान अब भविष्य में औरत हूं ही नहीं, पुरुष बनकर दीक्षा लेकर मुनि बनकर और मोक्ष चली जाऊं, ऐसी भावना होती कि नहीं होती, बोलो। तो हमारी मांग में कितना फर्क हो गया। मांग ही तुम ये करोगे कि मैं तुम्हारे संबंध में गुलाम रहूं तो तुम्हें कौन भगवान बनाएगा, कौन बनाएगा ख्याल में है ना। तो इसलिए यहाँ कहते हैं देखो भाई, ये जो भगवान की जो भक्ति है और तो भगवान की बात सुनना नाम स्वाध्याय है, ये दोनों ही महान है, बहुत अच्छी चीज है। यदि दोनों में से एक को हम बुरा मानते होते तो बेलगांव में आकर के दोनों काम क्यों कराते। अब वो पूजा भक्ति भी करा रहे हैं और स्वाध्याय भी सुना रहे हैं। चले देखो 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 आ गए ना पंडित अपने से, अब कहने लगे ना कि पूजा बेकार है पर स्वाध्याय बढ़िया है, कहने लग गए ना। लेकिन हमें पूजा भी तो हमें ही करा रहे हैं, तुम्हारी थोड़ी खराब रहे, खराब कह रहे तो हम अपनी कह रहे हैं, तुम्हारी थोड़ी कह रहे। ऐसा नहीं है भाई, मैं आपसे एक बात कहता हूँ गंभीरता से आप विचार करना कि भगवान महावीर आज से 2500 वर्ष पहले भारतवर्ष में केवल ज्ञान सहित विहार करते थे कि नहीं, और वे भगवान महावीर बेलगांव पधारे आए होंगे जो था। और हम सब बेलगांव वाले उनके दर्शन पूजन भक्ति और प्रवचन सुनने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे ना। भगवान महावीर आएंगे तो नहीं जाएंगे, क्या बात करते हो, हम तो उनके दासानुदास के भी दासानुदास हैं, पर आपने इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी कैसे लगा पंच के लेने का मेरा हो गया, न ऊपर नीचे जगह नहीं, सड़क पर जगह नहीं। तो भगवान महावीर आएंगे तो क्या होगा, क्यों आप इसी हॉल में कार्यक्रम कराओगे भगवान महावीर का, क्या बात करते हो। वह तो इंद्र जैसा व्यवस्थापक होगा तो समूह स्वयं साथ में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ तो उनका प्रवचन कितने घंटा रखोगे तो उनकी पूजन आप कितने घंटे, तो तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, वो प्रोग्राम बनाने वाला तो सौधर्म इंद्र है, वो तो समोसन की रचना करता है ना सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर, तो वो क्या करता है कि 7 घंटा और 12 मिनट रोजाना उनके प्रवचन होते हैं। भगवान की दिव्यधनि फिरती है, सुना कभी का नहीं, 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी दोपहर में और 6 घड़ी शाम, और 1 घड़ी होती है 24 मिनट की। अब लगाओ बोले साहब, तो 7 घंटा और 12 मिनट तक उनके व्याख्यान होते हैं। दिन कितने घंटे का होता है भाई साहब, 24 घंटे का, मुकता ये दिन रात 24 घंटे के होते हैं भाई साहब, दिन की बात करता हूँ मैं। कितने का होता है, 12 घंटे का, अभी 12 का होता है, अभी तो 8-10 का ही होता है, 10 या 10:30 का होता होगा ना। चलो इन भाई साहब की मान लेते हैं 12 घंटा, तो 7.5 घंटे तो प्रवचन में गया, अब 4.5 घंटे बचे, उसमें से खाना पीना नहाना धोना आना जाना, अब कमाने की बात छोड़ दो, धंधा पानी तो बंद नहीं करना पड़ेगा। क्यों भाई साहब, भगवान महावीर तुम्हारे गांव में आएंगे तब भी तुम धंधा पानी चालू रखोगे, दुकान बंद नहीं करोगे। अब हमारी बात दीदी है, देखते हैं सुबह शाम को कितनी भीड़ थी, अब दोपहर में आधा हॉल रह जाएगा, और सुबह भी कहाँ है, धंधे पानी का टाइम की बात दीदी है, और वैसे बिना धंधे पानी के टाइम की बात दीदी है। भगवान आएंगे तब भी ऐसा ही करोगे क्या, नहीं तब तो पूरी दुकानें बंद रखेंगे ना, तभी रखने ना भगवान है, मेरे आने में मत रखना दुकानें बंद। अरे भाई पंचम काल में भगवान आने वाले नहीं है, आएगा तो उनका कोई भगत ही आएगा, नग्न दिगंबर मुनिराज आए, कोई ज्ञानी धर्मात्मा आए, तब भी दुकानें बंद रखना चाहिए, आत्मा की बात सुनना और समझना हो तो नहीं। तो अपनी बात क्या चलती थी, 4.5 घंटे में नहाना धोना खाना पीना, कमाने की बात छोड़ दो, तो घंटा दो घंटा तो लगेगा इसमें क्या नहीं, तो 3 टाइम आना जाना, अब कितना टाइम बचेगा जो आप भगवान की पूजा भक्ति करोगे, मुझे बताओ। ऐसा होता था भगवान महावीर के समोसन में, हर गांव में जाते थे तो कार्यक्रम तो बनता होगा, तो घंटा ही 8 घंटा बचेगा कि नहीं, तो ज्यादा मिलेगा, इतना ही मिलेगा ना। तो जब भगवान महावीर साक्षात यहाँ थे तब क्या होता था, पूजा पाठ 1.5 घंटा और उनका प्रवचन 7.5 घंटा, और धीरे धीरे प्रवचन सिकुड़ता गया और पूजा फैलती गई, और पूजा 8 घंटा और प्रवचन 8 घंटा तो कहीं कहीं तो गायब ही हो गया। अभी द्वारा थोड़ा थोड़ा हमने शुरू किया है प्रवचन को फैलाना कि दिन में 4-5 घंटा प्रवचन और 4-5 घंटा पूजन। अभी तो बराबरी पे मामला आया है क्यों होना तो वो चाहिए कि 7-7.5 घंटा प्रवचन और 8-1 घंटा पूजा। मैंने कहते घबराना नहीं, पूजा का पूरा करना भाई साहब अपना प्रोग्राम। लेकिन जब आप पूजा का प्रोग्राम करते हो ना तो मैं तो बीच में नहीं बोलता हूँ ना, अपनी बात जो आपको कहना होती है कहते हो भगवान से, तो वही बात मेरे समय में मैं आपसे कह रहा हूँ। क्यों तो वो अनुपात क्या है? स्वाध्याय करने का अनुपात होना चाहिए 7-7 घंटा। तो उसके अनुपात में से जैसा जो समय मिले वो और दुनियादारी के काम में जाना चाहिए, पूजा भक्ति भी उसमें शामिल है। क्योंकि ये ज्ञान की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। जब भगवान की क्या आज्ञा है हम ये ही नहीं समझेंगे सुनेंगे नहीं तो उसे पालन कैसे करेंगे? देखो भगवान की भक्ति क्या हुई, इसके लिए कहते हैं कि ये निश्चय भक्ति है और ये व्यवहार भक्ति है। जब तुम सुनो और भगवान सुन श्रोता हो तुम सुनाओ तो वो व्यवहार भक्ति, और भगवान की बात सुनकर तुम जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करो उसका नाम निश्चय भक्ति, ये भी भक्ति ही है। बनारसी दास ने नाटक समय सार में लिखा है, हे भगवान तुम्हारी भक्ति मेरे हृदय में कई प्रकार से आती है। कैसी कैसी आती है कि कभी तो मैं तुम्हारे गुणानुवाद करता हूँ और कभी तुम्हारी बात सुनता हूँ, कभी पढ़ता हूँ, कभी उस पर विचार करता हूँ, कभी जो तुमने बताया उसका ध्यान करता हूँ। इस प्रकार 24 घंटे तुम्हारी भक्ति ही मेरे हृदय में बसती है। तो ये भी भक्ति ही हो रही है। ऐसा नहीं समझना कि पूजा बंद हो गई, क्योंकि भगवान की बातें की चर्चा हो रही ना, क्या उनकी वाणी समझे, उनने दिनवाणी में जो रहस्य बताया है, आत्मा परमात्मा की बात बताई है, वो बात हमारे गले उतरे। तो ये जो प्रयत्न है ये भी भगवान की भक्ति का ही प्रयत्न तो है, क्योंकि उनके प्रति हमारी भक्ति नहीं होती तो उनकी बात हम इतनी श्रद्धा से कैसे सुनते, कैसे समझते, जीवन में कैसे अपनाते। इसलिए ये भी एक भक्ति का ही कार्यक्रम है। ये इसे पूजा में विघ्न नहीं समझना, ये पूजा ही चल रही है भगवान की। तो इतना हुआ है कि आपने बोलना बंद किया है और भगवान ने क्या कहा है वो बात आपको सुनाई जा रही है। ये तो एक पूजा का ही एक अंग है। तो कहते निश्चय भक्ति में क्या है कि जो इंद्रियों को जीत कर ज्ञान स्वभाव से अधिक अपने आत्मा को जानता है उसे जितेंद्रिय जिन कहते हैं, और वो भगवान का नंबर 1 का भगत है। ऐसा लिखा है इसमें, पहले नंबर की स्थिति है। निश्चय स्थिति 3 प्रकार की होती है। ये पहले नंबर की निश्चय स्थिति है। कौन सी? इंद्रियों को जीत कर अपने आत्मा को पर पदार्थों से भिन्न जानकर उसका अनुभव करना, ये पहले नंबर की स्थिति है। तो सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं के आत्मा के अनुभव के काल में होती है। और दूसरी निश्चय स्थिति कौन है? अनुभव को जो थोड़ा करुणा योग जानते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि जो उपशम श्रेणी है ना, तो उपशम श्रेणी में दूसरी निश्चय स्थिति बोलो, उसमें तो भगवान की भक्ति का काम ही नहीं है। आत्मा में लीन हो गया ना उपशम श्रेणी में, तो दूसरे प्रकार की निश्चय स्थिति जो 7वें गुण स्थान से 11वें तक होती है, और खपत श्रेणी में जो स्थिति होती है वो जो 7वें से 12वें तक, वो तीसरी निश्चय स्थिति। अब उसमें तो भगवान का नहीं अपने आत्मा ही का ध्यान होता है कि नहीं होता, तो उसे भगवान की भक्ति 3रे नंबर की निश्चय स्थिति कहा। और फिर 13वें गुण स्थान में भगवान ही बन गए इसलिए वह स्थिति होती नहीं, स्थिति का फल आ गया। तो आप देखो वो ध्यान की अवस्था है, उसको यहाँ पर निश्चय स्थिति माने निश्चय भक्ति कहा है। तो बोलो वो छपक श्रेणी और उक्षम श्रेणी, इसमें जो आत्मा का ध्यान करते हैं जो आत्मा, तो किन का ध्यान करते होंगे? आदिनाथ का क्या महावीर का? चलिए अपने आत्मा का। तो अपने आत्मा का ध्यान किया तो उनकी भक्ति कैसी हो गई? कि भाई उनने यही तो कहा था, हे भव्य जीवो, तुम संसार के विषय भोग त्याग कर अपने आत्मा का ध्यान करो। और हमने ये आज्ञा मानी कि सबका त्याग करके अपने आत्मा का ध्यान किया तो उनकी निश्चय भक्ति हो गई कि नहीं हो गई, विचार करवा। भगवान ने ये नहीं कहा था कि तुम सारी दुनिया को छोड़कर मेरा ध्यान करो, ऐसा नहीं कहा था। तो कहा था बोलो, अपने लिखाना, डोले ध्याए अपने आत्म को, ऐसा नहीं कहा। हे दौलत राम, तू परमात्मा का ध्यान कर, सिद्धों का ध्यान कर, अरहंतों का ध्यान कर। क्या कहा? डोले ध्याए अपने आत्म को, कि तुम अपने आत्मा का ध्यान करो। अपने आत्मा का ध्यान करने से भगवान बनते हैं, किसी दूसरे के आत्मा का ध्यान करने से भगवान नहीं बनते हैं। तो क्या होता है? सात विषय पुण्य का बंध होता है। कल बता दिया था। एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि आप भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाते हैं तो जितनी भी भगवान की मूर्तियां हैं वो कौन सी मुद्रा में है? ध्यान मुद्रा में है ना, चाहे खड़गासन हो चाहे पद्मासन हो, लेकिन वो क्या कर रही है? आत्मा का ध्यान कर रही है ना। जरा विचार करना कि आपके घरों में जो आपके फोटो जड़े जड़ाए रखे हैं दीवार पे टंगे होंगे ना, वो कौन सी मुद्रा के हैं? सबके घरों में, मैं तो जब आऊंगा तब देखूंगा, आपको तो मालूम होगा ना कैसे कैसे फोटो आपने जड़ा के रखे हैं। सब लोगों ने अपने घरों में जो फोटो जड़ा के रखे हैं वे मालूम कब के हैं? जब हम जिंदगी में एक बार कार्टून बने थे ना, तब के हैं। ये समझ, शादी के टाइम पर सब आदमी ऐसी ड्रेस पहनते हैं कि न जैसी जिंदगी में पहले कभी पहनी थी और न बाद में कभी पहनेंगे, तो कार्टून ही बनते हैं कि नहीं? आगे तो क्यों नहीं पहनते? अच्छी ड्रेस है तो रोजीना पहनो, वो हमको बढ़िया पसंद है तो बढ़िया कांच में जड़ाकर अपने यहाँ रखी है। तो भाई साहब, यदि वो सबसे बढ़िया है अपना प्रसंग, तो ऋषभदेव भी घोड़े पर चढ़े थे, उनकी भी शादी हुई थी, उनने भी मुकुट बांधा था, उनने भी किसी के गले में बरमाला डाली थी, उनके गले में भी किसी ने बरमाला डाली थी, तो उनकी भी वैसी ही मूर्ति मंदिर में क्यों विराजमान नहीं थी? नहीं थी। हमारे जैन मंदिर में नहीं मिलेगी, वो दिगंबर मंदिर में तो कहीं मिलेगी ही नहीं। श्वेतांबर मंदिर वाले मुकुट मुकुट बांध दे कुछ कर दे, लेकिन अपने दिगंबर मंदिर में तो नीट एंड क्लीन एकदम। क्यों बाबूलाल जी साहब, है ना? क्यों उनकी मूर्ति ऐसी क्यों और अपनी ऐसी क्यों? क्योंकि जिंदगी में हम एक फोटो अपने घर में जड़ा के रखते कि नहीं? अपने माँ बाप का देखो सामने लगे है, और लगाते कि नहीं लगाते हैं? तो कौन सा फोटो रखना पसंद करेंगे कि जो अपना सबसे बढ़िया क्षण होता है, हमारी जिंदगी का सबसे बढ़िया क्षण होता है? तो महावीर की जिंदगी का सबसे बढ़िया क्षण कौन सा था? वही था ना जब उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब वो वीतरागी परमात्मा बने, जब उन्हें अनंत सुख प्राप्त किया 42 वर्ष की उम्र में, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वही था ना सबसे बढ़िया दिन। अरे भाई, जिस दिन वो एक साधारण आत्मा आत्मा से परमात्मा बन गया, उससे बढ़िया और कौन सा दिन होगा? ठीक है, रागी से भीतरागी बन गया, अनुरागी से भीतरागी बन गया, उससे बढ़िया और कौन सा दिन होगा? तो हमने वो ही मुद्रा हमें पसंद आई और हमने उसके मूर्ति बना के मंदिर में विराजमान कर। इसका अर्थ ये हुआ कि जिंदगी में सबसे बढ़िया काम कौन सा है, वही तो हमने पसंद किया ना। महावीर ने अपनी जिंदगी में सबसे बढ़िया काम 42 वर्ष की उम्र में आत्मा का ध्यान करके केवल ज्ञान की प्राप्ति और अनंत सुख की प्राप्ति की थी, और इसीलिए हमने वो ही मूर्ति बनाकर मंदिर में रखी है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, ये जो भगवान महावीर की तुमने मूर्ति बनाई है, जिस मुद्रा में जबकि तुमने मूर्ति बनाई है तब वे क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? विहार कर रहे थे या आहार कर रहे थे? क्या उपदेश दे रहे थे? क्या ध्यान कर रहे थे? इसका मतलब ध्यान सबसे बड़ा धर्म हुआ। किसका ध्यान कर रहे थे? आदिनाथ का या पार्श्वनाथ का? आत्मा का। किसके आत्मा का? अपने आत्मा का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने आत्मा का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। नक्की हुआ ना? भगवान की मूर्ति से बात नक्की हुई क्या नहीं? और इसीलिए हम उनको मंदिर में विराजमान करके रोजाना उनके दर्शन करते हैं, और इसलिए कि हमको भी ऐसा ही धर्म करना है। तो सबसे बड़ा धर्म तो वो ध्यान आत्मा का, तो दूसरे नंबर का धर्म कौन? कि वो आत्मा जिसका ध्यान करना धर्म है, उस आत्मा का स्वरूप समझना, क्योंकि समझे बिना ध्यान कैसे होगा? ध्यान तो समझने के बाद ही होगा ना। इसलिए अपने शास्त्र में लिखा है कि ध्यान और स्वाध्याय ये दो सबसे बड़े अंग हैं धर्म के। कौन कौन से? पहला ध्यान और दूसरा स्वाध्याय। इसलिए अपने कहते हैं ना कि वो आदमी तो बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यानी है। क्या बोलते हैं धर्मात्मा जी को? क्या बोलते हैं? ज्ञानी ध्यानी। ज्ञानी माने स्वाध्याय करने वाला, और ध्यानी माने ध्यान करने वाला। यही बड़ा मानता ना धर्मात्माओं में। जो अब तीसरा नंबर क्या है? तो जिस आत्मा का ध्यान हमें करना है वो ध्यान नंबर एक, और वो आत्मा का स्वरूप समझना एक दो, और जिसने वो स्वरूप समझाया है उसकी भक्ति करना ये तीन है ना? क्रम है क्या नहीं? तो हे गुरुदेव, हे भगवान, तुम्हारी वाणी में ये आत्मा की बात नहीं आई होती तो हम पामर प्राणी वो कैसे समझते? तो तीसरे नंबर में कौन आया? मेरे देव सास गुरु, कि जिन्होंने हमें आत्मा की बात समझाई है। सच्चे समझाने वाले तो देवसाज गुरु ही है। हम और तुम तो उन्हीं की बात को लेकर आपस में चर्चा करते हैं। हम कोई समझाने वाले थोड़ी है। हम कौन होते हैं समझाने वाले? लेकिन बात किसकी है? सर्वज्ञ भगवान ने जो दिव्य ध्वनि में कही थी, अरहंत भाष्यथम गणधर देवे ही गुच्छियम शब्दम, जो गणधर देव ने गूंथी थी, आचार्यों ने जो लिख करके रख दी जिनवाणी में, उपाध्यायों ने जो पढ़ाई, और साधुओं ने जिसके अनुसार अपना जीवन बनाया, ऐसे पंच परमेश्वरी ही वास्तव में इस भगवान की वाणी को बताने वाले हैं। अब वे नहीं हो और हमारा दुर्भाग्य हो तो और ज्ञानी धर्मात्मा लोग भी, जो ज्यादा थोड़ा जानते हैं, वे थोड़ा कम जानने वालों को बताते हैं, चर्चा करते हैं। वो कोई पाप तो नहीं है, अच्छा काम है। छोटे मंदिर ने लिखा ना कि तुम ग्रंथ क्यों लिखते हो? कि हमसे भी अल्प बुद्धि के धनी बहुत से जीव हैं, उन्हें समझाने के लिए हमें बात लिखते हैं। तो हम केसली पंच कल्याणक में विद्यासागर जी महाराज के साथ थे, और वहाँ एक बात आई कि साहब विद्वान और महाराज, कि विद्वान हमारा कल्याण कर सकते हैं कि महाराज हमारा कल्याण कर सकते हैं? कहीं तक आई बाबूलाल जी तो महाराज बैठे थे। मैंने महाराज से कहा, भरी सभा में ही, अभी भी कह रहा हूँ, टेप हो रहा, मैं जान रहा हूँ, घबराना नहीं, कि महाराज, महाराजों का काम महाराज करेंगे और विद्वानों का काम विद्वान करेंगे। विद्वानों का काम महाराज नहीं कर सकते और महाराजों का काम विद्वान नहीं कर सकते। मैंने कहा, आप तो बिहार करते हो, एक गांव की पाठशाला आप चलाओगे क्या विद्वान चलाएंगे? बोलो, ये रोजाना शास्त्र का प्रवचन गांव में विद्वान करेंगे क्या महाराज करेंगे? महाराज तो बिहार करते रहते हैं, क्यों वे गांव गांव में करेंगे, गांव में कौन करेगा? ख्याल में है ना, ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा क्या महाराज कराएंगे या विद्वान कराएंगे, ये विधान महाराज कराएंगे या विद्वान कराएंगे, क्यों? और जो उनका उपदेश का मार्ग है वो महाराज देंगे या विद्वान देंगे, वो सब अपनी अपनी बात सब करेंगे, कोई किसी का विरोधी नहीं है। वास्तव में तो सब एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के कोई विरोधी नहीं है। हम जो विरोधी के रूप में देखने की हमारी आदत बन गई है वो खोटी है। एक बात मैं कहके अपनी बात समाप्त करूंगा तो आपको ख्याल में आएगी। एक महिलाओं ने बड़ी सभा ली, महिलाओं की सभा थी और मीटिंग का विषय था कि पुरुषों ने हमें बहुत गुलाम बना रखा है, इनकी गुलामी से मुक्त कैसे हो। बड़े लंबे लंबे चौड़े भाषण हो रहे थे, कई पुरुषों के विरुद्ध ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। फिर जब मीटिंग खत्म हुई भाषण देने के बाद में, और सब महिलाएं महावीर भवन से बाहर निकली तो सबके पुरुष खड़े थे, गाड़ी लिए, स्कूटर लिए एक एक महिला एक एक पुरुष के पीछे स्कूटर पर बैठ के गई। तुमने तो मोर्चा बनाया था उनके साथ क्यों जा रही हो? क्यों? और पूछ रही थी अपने पति से कि मेरा भाषण कैसा रहा, तुमने सुना था बाहर खड़े खड़े के? हाँ, ये बहुत बढ़िया रहा। अरे ये आर्टिफिशियल लड़ाई है, इसमें कोई दम नहीं है। स्त्री और पुरुष एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है। क्यों प्रतिद्वंदी है क्या? लड़ाई लड़ना तो लड़ो, औरतों के गांव अलग बनाओ और पुरुषों के गांव अलग बनाओ। क्यों ऐसा करने को तैयार है कोई? अरे हम शिविर लगाते हैं तो बहुत महिलाएं और पुरुष आते हैं और जगह कम होती है ठहरने की, तो हम कहते हैं एक हॉल में महिलाएं महिलाएं ठहर जाए और एक हॉल में पुरुष पुरुष ठहरना होता है, तो हम अलग अलग कैसे ठहर सकते हैं? क्यों हम तो एक ही पेटी लाए एक ही लोटा डोर है, एक ही तो महिला उधर चली जाएगी, पुरुष इधर ठहरेगा क्या? तो हम तो कैसे ठहरेंगे? हम तो इकट्ठे ही ठहरेंगे, लेकिन हमारे पास सेपरेट रूम नहीं है ना। नहीं रहने दो, एक ही हॉल में समझ के लेकर रहेंगे। पूजा में भी पंडितों ने एक लेन में औरतों को एक लेन में पुरुषों को नहीं बैठाला, एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष, एक महिला एक पुरुष, एक इंद्र एक इंद्रणी। क्या नकली लड़ाई काय को लड़ते हो? नकली है, असली नहीं है। एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के शत्रु नहीं है। ऐसे ही मुनिराज और विद्वान एक दूसरे के पूरक है, शत्रु नहीं है। मैंने कहा महाराज तुम्हारा तुम शास्त्र लिखोगे तो छपाने तो हम जाएंगे ना प्रेस में, कि तुम ही प्रेस में जाओगे? प्रूफ रीडिंग तो हम ही करेंगे ना, कि तुम करोगे? क्यों फिर किताबें बेचेंगे तो हम ही, कि तुम बेचोगे? पैकेट बना बना के कौन भेजेगा बोलो, ले लेके कौन जाएगा? तुम तो अपने पिछली का मंडली नहीं ले पाते हो, ये किताबें कौन लिए लिए डोलेगा? आगे पीछे तो हम डोलेंगे महाराज, हमको शत्रु क्यों समझते हो? हम तो तुम्हारे सहयोगी हैं और आप हमारे गुरु हो, शत्रुता और मित्रता का सवाल कैसे है? ए धर्म की गाड़ी तो सबसे मिलके चलेगी। चार संघ थे ना अपने, मुनिराज आर्का श्रावक और श्राविका है ना, भगवान महावीर के संघ में एक दूसरे के भाई विरुद्ध नहीं है सबका, ये तो एक है। मोर्चा बनाना है तो एक मोर्चा बनाओ ना, एक दूसरे के विरुद्ध मोर्चा बनाने की क्या जरूरत है? और बनाना है तो अज्ञान के विरुद्ध मोर्चा बनाओ, असंयम के विरुद्ध मोर्चा बनाओ। हमारी समाज की क्या दुर्दशा हो रही है, ना उसे कुछ ज्ञान है, ना आचरण दिन ना रात गिरता जा रहा है। और गवर्नमेंट कहती है कि हमने देश में से टीबी को निकाल दिया, कोई एक टीबी का मरीज बताओ तो 1000 रुपया इनाम देंगे, कहती ना गवर्नमेंट। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई एक देह की टीबी तो निकल गई, लेकिन ये मन की टीबी घर घर में घुस गई। कौन सा घर ऐसा है जहाँ टीबी की बीमारी नहीं है? मैं आपसे पूछता हूँ, इस टीबी की बीमारी ने क्या तकलीफ पैदा की है कि हमारी शाम की पाठशालाएं चलती थी वो बंद हो गई? तो दिन में तो बच्चे स्कूल जाते हैं, धर्म की पाठशाला हम शाम को चलाते थे,
अभी टी वी शुरू हो जाती है। शाम की सात सभाएं होती थी जहां लोग धर्म की चर्चा करते थे, तो टीवी ने वो भी बंद कर दिया। जहां हम तो डाइनिंग रूम में बैठे बैठे टीवी चालू करके और वही खाना पीना, उन्होंने हमारा वो कहना खाने की टेबल और बैठने का रूम भी एक ही कर दिया है।
तो डाइनिंग रूम में बैठक करूँ, खाना बस।
लड़ाई लड़ना है तो सब मिलके इसके विरुद्ध लड़ो ना, तो बीमारी फैल रही है। तू हमारे हजारों बच्चों के मुख में नमोकार महामंत्र नहीं है, वे 24 तीर्थंकरों के नाम नहीं जानते हैं, एक्टरों के नाम जानते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों के नाम जानते हैं, क्यों जानते कि नहीं जानते? तीर्थंकरों के नाम नहीं जानते हैं। तो समाज में जो ये अज्ञान फैला है, समाज में जो ये अशिक्षा फैली है, और न खान पान का ठिकाना नहीं है, मध्यमास मदरा का घर में प्रयोजन बढ़ता जा रहा है, शुद्ध शाकाहार हमारा जीवन में नहीं रह गया है, तो इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी है हम सबको मिलकर, मुनिराजों को भी, आर्यिकाओं को भी, पंडितों को भी, श्रावकों को भी, सारी शक्ति लड़ना लगाना है तो अज्ञान के और असंयम के विरुद्ध, असदाचार के विरुद्ध लगाना चाहिए, अन्यथा समाज बचेगी नहीं। कोई भी देश गुलाम शत्रुओं की ताकत से नहीं बना है, अपनी फूट से गुलाम बनते हैं। कोई भी पार्टी, राजनीतिक पार्टी को कोई दूसरी पार्टी आज तक नहीं हरा पाई है, जब उसी पार्टी में फूट पड़ती है, अब आपस में एक दूसरे की जड़े काटने लगते हैं, तब वो हारती है। कांग्रेस को कर्नाटक में 10 सीटें किसी जनता दल ने नहीं दिलाई है, कांग्रेस की फूट ने ही दिलाई है। हमको यदि जिंदा रहना है और अपने धर्म को जिंदा रहना है, तो ये जो प्रतिद्वंदता को समाप्त करके सब लोगों को मिलकर अज्ञान के विरुद्ध मोर्चा लगाना चाहिए। हमारा तो भाई ये संकल्प है कि हम किसी के विरुद्ध नहीं है, सिर्फ अज्ञान के विरुद्ध है, मिथ्यात्व के विरुद्ध है, असंयम के विरुद्ध है, असदाचार के विरुद्ध है। हमारी सारी लड़ाई मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असदाचार के विरुद्ध है।